Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Saktiman Purushah Soyam Lingarupi Maheshwara Tasminnavirabhulinge Mahavishnur Jagatpatim. Upadanmay Purush Lingarupi Maheshwar Sambhu hi hai, jo nimit mayarupi sakti se yukt hai. Jagatpati Mahavishnu usme ikshan se avirbhut hote hai. Saktiman Purushah Soyam Lingarupi Maheshwara. Saktiman Purush Ling Rupi Mahadev Tankar hai. Upadan Karan aur Nimitta Karan Maya Rupi Durga Sakti hai. Aur ye dono ka sanyog bhautik prakriti se hai. Sambhu ka Sankar ka sanyog Maya se hai. To usme Maya ka arth hai jad, achetan. Sambhu Shankar वो माया में नहीं है, माया से उनका संयोग है, माया से उनका संपर्क है. शंकर त्रिगुणातीत है, माया से पर है, लेकिन उनका माया से स्पर्श जरूर है. श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार अनगिनित हैं. विष्णु, ये तीन विष्णुओं का वर्णन हम कर रहे हैं. ये तीनों विष्णु श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं. करणो दक्षय विष्णु, गर्भो दक्षय विष्णु और क्षीरो दक्षय विष्णु, ये तीन विष्णु श्री कृष्ण के पुरुष अवतार. श्री कृष्ण का सबसे पहला विस्तार है बलराम. बलराम का विस्तार है गोकुल में, गोलोक में चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव. और वो प्रथम चतुर्व्यूह का संकर्षण से वैकुंठ जगत में, दूसरा चतुर्व्यूह का विस्तार है संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव. दूसरे संकर्षण से करणोदक्षय विष्णु का आविर्भाव, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं. और वो कारण समुद्र में शयन करने वाले करणोदक्षय विष्णु का आगे विस्तार होता है गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में. और वो गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में. तो ये तीनों विष्णु करणोदक्षय, गर्भोदक्षय और क्षीरोदक्षय विष्णु, ये तीनों विष्णु ये श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं. और ये तीनों को माया का न स्पर्श है, न संग है, ये मायातीत है. लेकिन शंभु शंकर को माया का संग है. शंकर भगवान की पत्नी ही माया है, पार्वती दुर्गा. ये दुर्गा का विस्तार भी हमने पहले सीखा था कि श्री कृष्ण का विस्तार है राधा रानी. राधा रानी ये गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सहचारिणी या तो कॉन्सर्ट, उनकी अधिष्ठात्री देवी गोलोक वृंदावन की, श्री कृष्ण की कंपेनियन, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी. और वो राधा रानी का विस्तार वैकुंठ में सहस्त्र, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड लक्ष्मी, जितने श्री विष्णु श्री कृष्ण के अवतार नरसिंह, वामन वगैरह, इन सब की कंपेनियन कॉन्सर्ट लक्ष्मिया, ये राधा रानी का विस्तार है वैकुंठ में. लक्ष्मी सहस्त्र सतसं ब्रह्म सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्त्र सतसं ब्रह्म, सत सहस्त्र मल्टीप्लाई बाय सत, सौ का अर्थ है अर्थात असंख्य लक्ष्मिया. वैकुंठ में वो राधा रानी का विस्तार है. और वो लक्ष्मी का भौतिक जगत में विस्तार माया के रूप में होता है, माया दुर्गा. और दुर्गा के भी कई स्वरूप, जितने लोक इतना उनका स्वरूप. कोई दुर्गा या तो सत्या, सावित्री, वैष्णवी, काली, कई कई रूप हैं दुर्गा देवी के. तो ये भौतिक जगत में ये राधा रानी का विस्तार है. कुछ कार्य करने के लिए कृष्णा और राधा रानी, राधा, इन दोनों को लीला विस्तार के बिना या तो प्रणय केली कला विलास, प्रणय प्रेममयी केली लीलाएं का विस्तार, अर्थात राधा कृष्ण हमेश गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में प्रवृत्त रहते हैं। नित्य का अर्थ है कोई उनका ससेशन नहीं, कोई उनका अंत नहीं, हमेश तेल धारा व्रत वो लीलाएं चलती रहती है। तो उनको कोई कार्य नहीं, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तद सम अभ्यूर्थ दृश्यते, उनके सम उनके बराबर कोई नहीं दिखाई दे रहा, उनके ऊपर नहीं। और वो कृष्ण को न तस्य कार्यम, उनका कोई कार्य नहीं। श्री कृष्ण जैसे राजा, राजा जब तक दूसरे राजा की चढ़ाई न हो तब तक उनको कोई काम नहीं, आनंद विलास रस का आस्वादन, आनंद का आस्वादन हमेश वो नर्तकी म्यूजिक कुछ सो हमेश वो विलास आनंद विलास में रहता है। उसी तरह श्री कृष्ण को भी कोई कार्य नहीं, लेकिन चढ़ाई का अर्थ है कोई राजा चढ़ाई करता है उसका अर्थ है जब भक्त बुलाते हैं उनको तब उनको भागना पड़ता है। जब तक कोई भक्त बुलाता नहीं तब तक गोलोक वृंदावन के भक्तों के साथ उनकी नित्य लीला जारी रहती है। और अगर कोई भक्त उनको कुछ अलग अलग कार्य के लिए बुलाए फिर भी वो जाते नहीं है, अपने अवतार अपने विस्तार उनको भेजते हैं। वृंदावन परितज्य पादम एकम न अभिगच्छति, वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण एक कदम कहीं नहीं जाते। तो ये कृष्ण का कार्य। तो हम वर्णन कर रहे थे कि शक्तिमान पुरुषः सोयम लिंग रूपी महेश्वर, लिंग रूपी महेश्वर और तस्मिन् आविर्भू लिंगे महाविष्णु जगतपति। तो लिंग रूपी महेश्वर तो माँ है और बाप भी है और उनका संग भी हो, लेकिन जब तक श्री कृष्ण का टच न हो, विष्णु का टच न हो, विष्णु का स्पर्श न हो, तब तक उसमें से कुछ पैदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाविष्णु जगतपति, महाविष्णु स ईक्षत, महाविष्णु माया दुर्गा पर ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और वो दृष्टिपात से अनंत जीवों का वीर्य रूपी स्थापन करते हैं लिंग और योनि में। ज्योतिर्लिंग शंभु है और योनि स्वरूपा दुर्गा माँ जगत जननी दुर्गा, ये दोनों का संग ऊपर श्री विष्णु का ईक्षण आगे के श्लोकों में देखेंगे। पहले सब महतत्व था अलग अलग रूप में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पांव जननेन्द्रिय गुदा वाणी मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों की मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके एकादश देवताएं रुद्र चंद्र वगैरह, इंद्रियों को चलाने वाले देवता, ये महत्तत्व उनको बोलते हैं। सारा महत्तत्व है या सरल भाषा में ये भौतिक सामग्रियां है, भौतिक सामग्री जो जीव को भौतिक इच्छा हुई वो भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए ये भौतिक सामग्रियां थी, मदर नेचर में दुर्गा में थी। और लिंग ज्योतिर्लिंग भी था शंभु, लेकिन स इक्षतः इमान लोकान सृजायते, उनके ईक्षण से ही इमान लोकान जाय सुजायते, ये सब लोग उनके ईक्षण थे, ईक्षण से उनके दृष्टिपात से मदर नेचर इम्प्रेग्नेंट हुआ। तो ये श्लोक का ये अर्थ है। और 11वां श्लोक, सहस्त्र शिरसः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सहस्त्रबाहुर् विश्वात्मा सहस्त्रांशः सहस्त्रशुः। तो जगतपति महाविष्णु, ध्यान दो, महाविष्णु करुणोदक्षय विष्णु और नारायण, ये तीनों नाम एक ही विष्णु का है, महाविष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु और नारायण। नर नरा अयन, नरा पानी, अयन पानी में जो सोते हैं, अयन कर शयन करते हैं, नारायण, नारा प्लस अयन शयन नारायण। तो ये कर्णोदक्षय विष्णु के शरीर से जो पसीना पैदा हुआ उनसे कारण समुद्र बना, गर्भोदक्षय विष्णु के पसीने से जो पानी बना ये सब दिव्य पानी है, यहाँ जैसा गंदा पानी नहीं। ये चिन्ह में ये पानी हमारी तरह चेतन है, ये पानी हमारी तरह पैदा कर सकता है, ये पानी सामान्य पानी नहीं है। गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में से जो पानी निकला उनसे हमारा ब्रह्मांड आधा भर गया और उसके समुद्र में गर्भोदक्षय विष्णु शयन करते हैं। तो ये कारण समुद्र, और ये कारण समुद्र में नारायण नहीं सहस्त्र शीरशाह पुरुषाह, ये नारायण के सहस्त्र या तो असंख्य सर है सिर है, और सहस्त्राक्ष सहस्त्र उनकी आंखें हैं, और सहस्त्र पाद उनके हजारों पांव हैं, सहस्त्र बाहु उनके हाथ सहस्त्र हाथ हैं, और विश्वात्मा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के आत्मा है। ये होते ही ये ब्रह्मांड अस्तित्व में रहता है, क्योंकि ये ब्रह्मांडों के आत्मा है। विश्वात्मा सहस्त्रांश सहस्त्रशु, और असंख्य जीवों की सृष्टि ये करते हैं, असंख्य जीवात्माओं की सृष्टि करते हैं कर्णोदक्षय विष्णु, ये उनका विश्व रूप है विश्व रूप। तो ये कर्णोदक्षय विष्णु के शरीर के छिद्रों से और उनके उच्छ्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और ये कर्णोदक्षय विष्णु जो शयन कर रहे हैं वो कर्णोदक्षय विष्णु का विस्तार असंख्य ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में होता है। गर्भोदक समुद्र में ये जो हमारा ब्रह्मांड है, तो गर्भोदक्षय विष्णु के पसीने से दिव्य पसीना से आधा ब्रह्मांड भर जाता है, और ये ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु शयन करते हैं, और वो गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल में से कमल का डीरा कमल का स्टेम कमल का नाल फूटता है, और ये कमल पर जिसको हम सत्यलोक ब्रह्मलोक कहते हैं वहाँ ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। स्वयं भू वो आत्मभू ब्रह्मा का नाम है, अयोनि की कोई योनि नहीं, आत्मभू खुद पैदा हुए ब्रह्मा, वैसे विष्णु ही उनकी माता पिता है। तो ये कर्णोदक्षय विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है, वो विस्तार है क्षीरोदक्षय विष्णु और ब्रह्मा और शंभु। गर्भोदक्षय विष्णु से ये तीन विस्तार, शंकर का विस्तार, ब्रह्मा का विस्तार और क्षीरोदक्षय विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आम जनता जानती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है, नहीं इनके आगे कहीं कुछ है, कृष्ण से लेके यहाँ तक कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परात पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है मूल भगवान। लेकिन आम जनता क्या जानती है, त्रिन त्रिपुटी ब्रह्मा विष्णु महेश यही भगवान है। तो ये असंख्य ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, असंख्य, ये श्री कृष्ण का वैभव है, वैभव अथवा तो ऐश्वर्य है, और श्री कृष्ण के इशारे पे ये सब कुछ नाचते हैं। सोचो कृष्ण कौन है, एक छोटा सा कन्हैया, एक ग्वाला, ये कोई लगता है कि हमारा है जो आपका उनसे स्नेह हो प्रेम हो संबंध हो, मेरा बेटा है मेरा जो भी है, लेकिन ये कन्हैया बहुत नाटक वाले हैं, इनका नाटक नटवर नट नाटक करता है ना, तो ये नटों में जो नाटक करने वाले नट हैं उसमें वर है नटवर एक कन्हैया। तो एक कन्हैया का विस्तार करोड़ों दक्ष विष्णु उनके शरीर में से अनलिमिटेड असंख्य ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश। कितने ब्रह्मांड? असंख्य। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश? असंख्य। हमारा चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मांड छोटा है, चतुर्वेदी चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा एक दिन द्वारिका गए और द्वारिका श्री कृष्ण के दर्शन को गए तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया द्वार पर। बोलते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, श्री कृष्ण के दर्शन मुझे चाहिए। लेकिन द्वारपाल, कौन सा ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा कौन है? हमें हमारे मालिक से आपके लिए परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन लेने के लिए गए। कृष्ण को कहते हैं द्वारपाल कि ब्रह्मा आए हैं, आपके दर्शनार्थी हैं। तो कृष्ण कहते हैं कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा? तो द्वारपाल आए, पूछा आप कौन से ब्रह्मा हो? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। और कौन सा ब्रह्मा है? और कौन ब्रह्मा है? चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो श्री कृष्ण पास गए तो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ठीक है बुलाइए। तो ये ब्रह्मा अंदर आए, श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं और ब्रह्मा आके उनको नमस्कार करते हैं अपने मुकुट के साथ। सुंदर आवाज आता है भागवत में दशम स्कंद कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, उसमें ये कथा आती है। तो कृष्ण ने सब ब्रह्मांड से ब्रह्माओं को बुलाए और ऑर्डर दिया तुरंत आओ। कृष्ण का ऑर्डर चलता है तो ब्रह्मा भागते हुए आए। कोई 10 मुखी ब्रह्मा है, कोई 100 मुखी ब्रह्मा है, कोई 1000 मुखी ब्रह्मा है, कोई 1 करोड़ मुखी ब्रह्मा है। जितना बड़ा ब्रह्मांड इतने ब्रह्मा के सर। तो हमारे चतुर्मुखी छोटा सा ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपुटी कितनी है? जितने ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड है? असंख्य ब्रह्मांड। तो ये है सहस्त्र शीरषः पुरुषः, सहस्त्र पाद, सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद, सहस्त्र बाहुर विश्वात्मा, सहस्त्रांश सहस्त्रशु। ये कर्णो दक्ष विष्णु। तो ये ब्रह्मा ये कन्हैया को नमस्कार करते हैं। ये ब्रह्मा ने अपराध किया था भगवान का, कृष्ण का, ये तो ऑर्डिनरी ग्वाला है, वो भगवान थोड़ा हो सकता है। तो ये भी लीला है भगवान की, कृष्ण की। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है, आप कृष्ण को समझने की कोशिश करो। ये कृष्ण ही सब अवतारों के, सब विष्णु के, सब ब्रह्मा के, सब महेश्वर के, सब सृष्टि के मालिक है। लगता है छोटा कन्हैया और है भी छोटा कन्हैया। क्यों? कि वो रस का आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन। तो ये कन्हैया का ये वैभव है, वैभव या तो ऐश्वर्य। और यह ब्रज में वो कन्हैया अपनी भगवत्ता भूल जाता है, अपने आप में भूल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भुला देता, माया उनके ऊपर प्रभावित हो गई और माया उनको भुला देती है कि ये कन्हैया भगवान नहीं है। अपने आप में भूल जाते, अपनी ही माया है, योग माया शक्ति। तो ये कन्हैया का वैभव ऐश्वर्य भगवत्ता, तो ये भगवत्ता आम जनता नहीं जानती। आम जनता जानती कृष्णा विष्णु का अवतार है। सबसे गलत ये ब्रह्मा, ब्रह्मा बोल रहे हैं ब्रह्मा। ये सारी ब्रह्म संहिता में कृष्णा ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एस्टैब्लिश साबित किया गया है। आगे का श्लोक, नारायण स भगवान अपस्तस्मात् सनातनात् आविरासित कारणानेदि संकर्षणात्मकः योग निद्राम गतस्तस्मिन् सहस्त्रांश स्वयं महान। तो ये महाविष्णु श्री नारायण ही सनातन पुरुष हैं। ये कारण समुद्र में जल उत्पन्न करते हैं और संकर्षण सहस्त्र सहस्त्रांश परम पुरुष स्वयं उस कारण समुद्र में योग निंद्रा में शयन करते हैं। तो हमने अभी देखी योग निंद्रा, वो निंद्रा नहीं थी, ये सर्जन था। तो जब नारायण योग निंद्रा में शयन करते हैं तब अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें वापस चले जाते हैं। किसमें? कर्णोदक्षय विष्णु में। तो ये कर्णोदक्षय विष्णु जो है बड़े, वो ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जब श्वास अंदर लेते हैं, ऐसे अंदर श्वास लेते हैं, तो ये सारे असंख्य ब्रह्मांड उनमें वापस समा जाते हैं और उनको बोलते हैं योग निंद्रा। योग निंद्रा यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, योग निंद्रा गतस्तस्मिन् सहस्त्रांश स्वयं महान। जब योग निंद्रा में कर्णोदक्षय विष्णु चले जाते हैं योग निंद्रा, तो असंख्य जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जीवात्माएं वापिस कर्णोदक्षाय विष्णु में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं महाप्रलय, महाप्रलय बोलते हैं, सबका प्रलय हो जाता है। और कल्पक्षय विसृजामि, कल्पादौ विसृजामि अहम्। और जब योग निंद्रा से महाविष्णु फिर से उच्छ्वास करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और इतने ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सोचो, ये श्री कृष्ण को कोई कार्य करना नहीं होता। श्री कृष्ण का काम है नित्य लीला, अपने परिकरों के साथ नित्य लीला में रत रहना। तो उनके विस्तार का विस्तार का विस्तार है कर्णोदक्षय विष्णु। और कर्णोदक्षय विष्णु इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, श्वास उच्छ्वास से सारा भौतिक जगत ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए 13वां श्लोक। तद रोम विलजालेषु बीजं संकर्षणस्य च हेमान्यण्डानि जातानि महाभूता आवृतानि तु। तो तद रोम विलजालेषु, उनके रोम कर्णोदक्षय विष्णु के रोम पोर्स, उनके शरीर के छिद्र, उससे क्या होता है, ये सारे जो अनंत हेमांड उत्पन्न होते हैं। और जब वो उच्छ्वास और श्वास, तो जब वो इनहेलिंग करते हैं सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। तो यहाँ शंका भी हो सकती है हमें कि ये कर्णोदक्षय विष्णु में इतने सारे ब्रह्मांड कैसे प्रविष्ट होते होंगे और उनका स्वरूप कितना होगा। तो कहीं सूर्य के असंख्य किरण में असंख्य कण इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके तरह दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में कम से कम 1000 भागवत जैसे ग्रंथ हम डाल सकते हैं, और वो भी कितने मिनट में, आधे घंटे में, ज्यादा नहीं। कितने बड़े पुस्तक और कितने पुस्तक, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्शन। तो ये भौतिक जगत में एक भौतिकवादी लोग कर सकते हैं, तो भगवान की जायजेंटिक, भगवान का इतना बड़ा स्वरूप और उसमें ब्रह्मांड हेमांड सर्जन विसर्जन कोई भगवान के लिए अशक्य बात नहीं है। तो आगे वाला श्लोक है 14। प्रत्यांडमेव एकांशात् द्विशति स्वयं सहस्त्र मुर्दा विश्वात्मा महाविष्णु सनातन। वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश करते हैं। प्रत्यांड मेव एकांश, अपने अंश से प्रत्येक अंड में, ब्रह्मांड में कर्णोदक्षय विष्णु प्रविष्ट होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। ये आपको याद रखना होगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ गर्भोदक्षय क्षीरोदक्षय कर्णोदक्षय विष्णु, नहीं तो आप ब्रह्म में रहोगे। एजुकेशनल कथा है, खाली कथा नहीं है, इससे ही आपको सब शास्त्र समझ में आएंगे। ये समझोगे ब्रह्म संहिता, सब शास्त्र आपको आपो आप समझ में आ जाएंगे। तो उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात सनातन महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तक विशिष्ट होता है, अतः उसे सहस्त्र शीर्षा कहा जाता है। उस स्वरूप को गर्भोदक्षय विष्णु भी कहा जाता है। यह यष्टि अंतर्यामी पुरुष और विश्वात्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उसी तरह ये ब्रह्मांड में आत्मा है, वो आत्मा का नाम क्या है? गर्भो दक्षय विष्णु, ये ब्रह्मांड के आत्मा है। और वो आत्मा, ब्रह्मांड के आत्मा, अणु अणु में, कण कण में, अणु के बीच में, हमारे हृदय में, हर जीवात्मा में अंतर्यामी रूपे क्षीरोदक्षय विष्णु का विस्तार ये है। क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा विस्तार, तो ये गर्भोदक्षय विष्णु का और विस्तार होता है, वो विस्तार है क्षीरोदक्षय विष्णु, जिनको हम परमात्मा कहेंगे। मैं बार बार गुनगुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नोट भी आपकी हो जाए और आपको पता चले कि कृष्ण से हम कितने आगे निकल चुके हैं, जो ओरिजिनल भगवान है। तो वेद भी गलती करते हैं और वेदांतिस्ट भी गलती करते हैं, ज्ञानी भी गलती करते हैं, ध्यानी भी गलती करते हैं, योगी भी गलती करते हैं, मुनि भी गलती करते हैं, इंद्र भी गलती करते हैं और मुनिंद्र भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं। यही सही है ब्रह्म संहिता। एक कृष्ण का ऐश्वर्य भगवत्ता समझो, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का वैभव, कृष्ण की भगवत्ता लगता है छोटा कन्हैया, लेकिन ये सब उनका विस्तार है। आइए आगे वाला श्लोक लेते हैं, 15। वामांगात असृजत विष्णुम दक्षिणांगात प्रजापतिम ज्योतिलिंगमयम शंभुम कुर्च देशात अवासृजत। उन्हीं महाविष्णु कर्णोदक्षय विष्णु ने अपने बाएं अंग से गर्भोदक्षय विष्णु और दाएं अंग से प्रजापति, प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा, दक्षिण अंग में से प्रजापति, वाम अंग में से विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु और ज्योतिर्लिंगम मयि शंभुम और अपनी दोनों बहुओं के बीच में से शंभु का विस्तार क्रिया सृष्टि की। किसकी सृष्टि? कर्णोदक्षय विष्णु की सृष्टि। कर्णोदक्षय विष्णु के वाम में से गर्भोदक्षय विष्णु और दक्षिण में से प्रजापति ब्रह्मा, दोनों भवों के बीच में से शंभु की सृष्टि होती है। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में उनकी स्थिति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अहंकार आत्मकम विश्वम तस्मात एतत् व्यजायत। जीव के संबंध में शंभु की क्रिया यही है कि उन्हीं शंभु से यह अहंकारात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। तो ये ब्रह्मांड में सब कुछ पैदा हुआ, तो कैसे पैदा हुआ? शंभु, शंभु से अहंकार पैदा हुआ, शंकर शंभु, और ये अहंकार से ये सारा जगत पैदा हुआ। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये तीनों अहंकार से, मैंने आगे आपको कई बार कह चुका वो सब पैदा हुआ। इंद्रियां, इंद्रियों की तन्मात्रा, इंद्रियों के देव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब महत्त्व शंभु से माया दुर्गा में पैदा हुआ। श्लोक संख्या 17। अथ तै त्रिविधै वेशै लीलाम उद्धृतः किल योग निंद्रा भगवती तस्य श्री इव संगता। तदंतर वही महापुरुष भगवान विष्णु प्रजापति तथा शंभु के तीन रूपों में भौतिक ब्रह्मांडों में प्रवेश करके पालन श्रुति संहार लीला करते हैं। ये तीनों हर ब्रह्मांड में सृष्टि सर्जन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विसर्जन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि सर्जन, विष्णु सृष्टि पालन और शंभु सृष्टि विसर्जन करते हैं। यह लीला भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत, भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत, ये माया का साम्राज्य है। अतः उसको तुच्छ जानकर भगवान के निज सत्ता रूप विष्णु अपनी चित शक्ति की अंशभूता स्वरूपानंद समाधिमय भगवती योग निंद्रा के साथ संग करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। तो यहाँ तीनों की बात बताई और कैसे उनका विस्तार हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ही ये जगत का पालन पोषण और विसर्जन करते हैं। 18वां श्लोक। शिश्रुक्षयां तथा नाभै तस्य पद्मं विनिर्ययौ तन्नालं हेमन लीनं ब्रह्मणो लोकम अद्भुतम। गर्भोदक्षाई विष्णु जड़ सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उदित होता है। वही स्वर्ण कमल ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक है। तो ये बात भी हम पहले ले चुके हैं कि जो गर्भोदक्ष विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो अपनी नाभि कमल से स्वर्ण कमल से हिरण्य गर्भ श्री ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा ये सृष्टि की रचना करते हैं। श्लोक संख्या 19। तत्वानि पूर्व रूढ़ानि कारणानि परस्परम समवाय अप्रायोगात् च विभिन्नानि पृथक पृथक चित्त शक्तिया संजामान अथ भगवान आदि पुरुषः यो जयत मायया देव योग निंद्राम अकल्पयत। तो भगवान आदि पुरुष महाविष्णु पृथक पृथक तत्वों को योग माया में स्थापित करते हैं। भौतिक तत्व, महत तत्व या प्रधान तत्व एक शब्द है। ध्यान दो, जब आप भागवत पढ़ोगे कोई शास्त्र पढ़ोगे तो मैं जो समान शब्दों का आपको ज्ञान देता हूँ वो बहुत जरूरी है। जैसे नारायण या कर्णोदक्ष विष्णु या महाविष्णु, वैसे प्रधान ये भौतिक तत्व है। प्रधान या तो महत तत्व या भौतिक तत्व या 24 भौतिक तत्व, ये शब्द एक है सब। तो महाविष्णु अपनी चित शक्ति द्वारा माया को क्रियाशील करते हैं और माया में ये सब तत्व स्थापित करते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं आप कि माया ही ये 24 तत्व है, या तो दुर्गा ही ये 24 तत्व है। दुर्गा के 8 हाथों में हाथ शस्त्र है। वो क्यों? क्योंकि ये जीव जब तक माया चाहता है तब तक माया रूपिणी दुर्गा अम्बा उनको ये त्रिशूल से ये भौतिक जगत में उनको रखती है। जैसे हमने देखा त्रिशूल, 10 त्रिशूल थे आध्यात्मिक जगत में। कितने त्रिशूल थे? 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल। क्यों थे? आध्यात्मिक जगत में भक्त के बिना और किसी को प्रवेश नहीं है। ये 10 त्रिशूल मायावादी, निराकारवादी, ज्ञानवादी, ब्रह्मवादी, ओमकारवादी, तत्वमसीवादी, सोहमवादी, ध्यानी, ज्ञानी, शुष्क वेदांतिस्ट, सबको भगा देते हैं त्रिशूल। क्योंकि भगवान के धाम में भगवान अपने अंतरंग पार्षद शिष्य पार्षद भक्तों के साथ अंतरंग गुहिया लीलाएं करते हैं। अगर अभक्त प्रवेश कर देगा तो पहले तो वो द्वेष करेगा कि ये क्या, पहले वो मत्सरता उनको पैदा होगी, सारा माहौल बगड़ जाएगा। इसलिए भगवान भक्ति भागवत गीता ये सब चीजें स्वजातीय है। और मायावादी निराकारवादी ये सब मैंने बताया, वो सब विजातीय है। ब्रह्मवादी तेजवादी, तो त्रिशूल, तो ये दुर्गा के हाथ में त्रिशूल और तरवाल और सब क्यों? क्योंकि जो जीव माया बद्ध है, जो जीव भगवान श्री कृष्ण से अलग भोग की वांछा करता है उनके लिए ये माया त्रिशूल रखती है, और ये त्रिशूल से जीव को ये भौतिक जगत माया का जगत में उनको रखती है। इसलिए उनको बोलते हैं दुर्गा, ये दुर्गा के फंदे से, दुर्गा के पंजे से, दुर्गा के चांगुल से आप कभी भी चटक नहीं सकते। उनसे चटकना है तो भक्ति और कुछ नहीं। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्रश्च, ये अगले कथाओं में बात करेंगे भक्ति की। यहाँ आपको ज्ञान दिया जा रहा है 7 दिन में कि भगवान कौन है, भगवान का धाम कैसा है और भगवान की उपासना कैसे की जाएगी। एक कलयुग में भगवान की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना उनके नाम का 16 नामों का महामंत्र से ही उनकी उपासना करने से हमें गोलोक वृंदावन में त्रिशूल कुछ नहीं कर सकेगा। गोलोक वृंदावन में हमारी एंट्री 16 माला, 16 माला ए डे, हरे कृष्णा सोलह माला ये मंत्र की, एक माला कम नहीं। अगर कोई 16 माला ये मंत्र की करता है तो उनको वो 10 त्रिशूल बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, उनके लिए द्वार बना देंगे और आध्यात्मिक जगत में उनकी एंट्री, भगवान के साथ नित्य रमण, नित्य आनंद, नित्यानंद। लेकिन हमें 16 माला का रटन करना होगा। यू हैव टू पे द प्राइस। आप सुंदर हीटर कैलाश लेने जाए तो हीटर शॉप में से उठा लाए और पैसा देखेंगे, कभी कभी जबी जबी तभी तभी सोचेंगे तो हीटर नहीं मिल सकता। तो आपको गोलोक वृंदावन में रस का आस्वादन करना है, रस रसिक लीला है, रसिक ए रस नो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे, काये क जाने व्रजनी रे गोपी बड़े नर सैयो भोगी रे जी, भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्म लोक मा नाही रे जी। ये रसनो स्वाद शंकर जाने, ये जो गोलोक वृंदावन में जो रस बरस रहा, रसा स्वादन हो रहा है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, शांत रस, ये सब रसनो स्वाद आस्वादन करना है। श्री कृष्ण की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, आपको वहां रस का आस्वादन करना है तो आपको प्राइस चुकानी होगी। वो प्राइस है 16 माला ए डे। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा अगर ये 16 माला नहीं तो ये भौतिक जगत में ये माया आपको त्रिशूल से, तरवाल से हर रोज मार मारेगी, मार पिटाई करेगी। निकस्त माया तारे जापोटी आदरे, कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे। निकस्त माया तारे जापोटी आदरे, कृष्णा बहिर्मुख, कृष्णा से उल्टे भौतिक जगत में, और भोगो वांछा करे, भोग जो आध्यात्मिक जगत में है वो प्रसाद है, दिव्य है, और भौतिक जगत में भोग है, ये भोग की इच्छा करते हैं। भौतिक जगत में भोग ये 5 मात्राओं से 6 ऐश्वर्यों का भोग जीव चाहता है, पांच मात्रा के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच इंद्रिया कौन सी, आंख कान नाक जीभ त्वचा, से कौन से ऐश्वर्यों का भोग करना चाहते हैं, ब्यूटी सुंदरता श्री पैसा ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्य बल यश कीर्ति। आज मैंने ये दान किया, कल मैंने वो किया, कीर्ति यश श्रेय श्रेय सुंदरता सुंदरता का भोग करना चाहते हैं, और ज्ञान ज्ञान का भोग और वैराग्य का भोग मैंने ये त्याग दिया। तो ये छह ऐश्वर्यों का भोग करना चाहते हैं और उससे भगवान भोग भग भगवान ये भग है सद्भग सड़भग उच्यते छे भग है ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्यों का भोग ये जीव भौतिक जगत में भगवान से विलग अलग होके भोगना चाहता है, इसीलिए माया तारे झापोटी आधरे, माया उनको मार मारती है, माया तारे झापोटी आधरे, माया उनको मार मारती है। तो ये आज का श्लोक है 20। योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहाम प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुद्ध्यते। तो पृथक पृथक तत्वों की योजना की हर ब्रह्मांड में, और बाद में उसमें जीव की प्रतिष्ठा की। ये भौतिक जड़ पदार्थ अपने आप में अस्तित्व में नहीं आ सकते, इसलिए जीव भूत महाबाहो अएदम धारयेत जगत। ये जगत जीव से धारण किया जाता है। ये 14 भौतिक तत्व अपने आप में चेतन नहीं हो सकते, अपने आप में क्रियाशील नहीं हो सकते, लेकिन उसमें जीव की अवस्थिति होती है, तब ये भौतिक तत्व अएदम धारयत जगत, ये जगत की सृष्टि होती है सृष्टि। तो बराबर ध्यान दो कि ये शरीर आपका जो है भौतिक तत्वों का है, 24 एलिमेंट्स 24 तत्वों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 10 इंद्रिया आंख कान नाक जीभ त्वचा, हाथ पांव, जननेन्द्रिय विष्ठा की और वाणी, 10 इंद्रिया 15 उनकी तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीभ त्वचा की तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 20 के ऊपर मन बुद्धि अहंकार, ये 23 और 24वां जीव। तो ये आपका अस्तित्व शरीर, और शरीर के ऊपर जीव, और ये जीव ये इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, उसमें से सुख दुख पैदा होता है। तो हमें ये भौतिक सुख दुख नहीं चाहिए, हमें भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत, जिसका वर्णन हमने 2 दिन किया गोलोक वृंदावन, वहां हमें प्रवेश करना है। तो उनके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो है 16 माला, और कौन सा मंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जीव का संबंध जड़ के साथ, और ये जड़ हम बन गए तो उसमें से हमें चटकना है। तो इसके लिए हरे कृष्णा मंत्र आध्यात्मिक जगत में 21वां मंत्र है, सनित्यो नित्य संबंधः प्रकृतिश्च परेवसा। वही जीव नित्य है, उसका श्री कृष्ण से नित्य संबंध है, वह परा प्रकृति है। ये जीव भौतिक प्रकृति नहीं है, तो ये नित्य संबंध है जीव का श्री कृष्ण से। इसीलिए जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब जीव परमात्मा को मिलके उनकी नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो, तो उनको सुख हो सकता है। वह गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ हमारा कोई संबंध हो, माता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गोपी, ग्वाल मित्र, परिकर, उद्धव और दासत्व, पत्रक जैसे, तो ये संबंध, कुछ संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये ब्रह्मा चाहते थे कि मैं सृष्टि करूं, तो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा विष्णु 22वां श्लोक एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पद्मम हरेर्भूतम तत्र ब्रह्मा भवद भूयस चतुर्वेदी चतुर्मुखम। तो विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ वह चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थान है। 22वां श्लोक और 23वां श्लोक संजातो भगवत छाया तत्कालं किल चोदितः शिश्रुक्षायां मतिं चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतः ददर्श केवलं त्वां नान्यत् किमपि सर्वतः। तो कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा की अवस्थिति होती है और भगवत शक्ति से संचालित ये पूर्व संस्कार ब्रह्मा के थे। ब्रह्मा की उत्पत्ति तो हुई लेकिन ब्रह्मा के पूर्व के संस्कार क्या थे? सर्जन करना, सृष्टि करना, उनकी इच्छा थी, उनके संस्कार थे, वो लेके ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसे जीव ये शरीर में आता है तो पूर्व संस्कार लेके आता है, पूर्व वासनाएं, पूर्व इच्छाएं लेके जीव उत्पन्न होता है और भगवान हृदय में से परमात्मा रूप उनको वो वासनाएं इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उस प्रकार का जड़ शरीर, जड़ इंद्रियां देते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा को भी कुछ वासनाएं थी सृष्टि की, तो उनको सृष्टि करना था। तो दसों दिशा में उनने देखा तो अंधकारमय सब कुछ प्रतीत हुआ। ददर्श केवलम ध्वांतम, अंधकार ही देखा और कुछ नहीं देखा। तो 24वां श्लोक उवाच पुरतस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया बरहे मंत्रम ते दास्यति प्रियम। तो तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या सरस्वती उवाच पुरस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती, श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति सरस्वती, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा जब उनको अंधकार अंधकार ही प्रतीत हुआ, तो सरस्वती उनको कहती है दिव्य शक्ति कृष्ण की गायत्री। तो गायत्री या सरस्वती कहती है कि आप ये श्री कृष्ण की आराधना ये अष्टादश अक्षर मंत्र से करो। अष्टादश मंत्र, अष्ट दस अक्षर मंत्र कौन सा है ये यहाँ कहा गया है। पूरा मंत्र जोड़ के नहीं बताया क्योंकि ये गायत्री मंत्र जोड़ के बताना नहीं चाहिए। अगर आप दीक्षा लेते हो ब्रह्म गायत्री ब्राह्मण दीक्षा, तो ये गायत्री मंत्र आपको कान में कहा जाता है, गुप्त गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र गुप्त है, जो आप गायत्री मंत्र जानते हो वो गायत्री मंत्र की यहाँ बात नहीं, वो ब्रह्म गायत्री है। सूर्य गायत्री, सूर्य देव को हम प्रार्थना करते हैं ब्रह्म गायत्री में, मुझे श्री कृष्ण पर ध्यान करने में आप सहायक बनो, सूर्य देव को ये प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुव स्वः तस् सवितुर वरेण्यम, तो ये है ब्रह्म गायत्री। ये सूर्य देव को हम प्रार्थना करते हैं, हमें श्री कृष्ण के पर ध्यान करने में, अर्थात ये श्री कृष्ण गायत्री करने में हमें सहायता दो। तो ये कृष्ण गायत्री है, उनको गोपाल मंत्र बोलते हैं या कृष्ण गायत्री मंत्र बोलते हैं? ये क्या कृष्ण गायत्री मंत्र है जो ब्रह्मा को सरस्वती देती है और सरस्वती श्री कृष्ण की वेणु से ये गायत्री मंत्र निकलता है और सरस्वती के माध्यम से ब्रह्मा को तेने ब्रह्मा हरुदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो। ये ब्रह्मा के हृदय में ये गायत्री मंत्र श्री कृष्ण अपनी वेणु से, वेणु नाद से उनको देते हैं सरस्वती के माध्यम से। तो ये गोपाल गायत्री मंत्र या कृष्ण गायत्री मंत्र क्या है कि काम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ये उनके बीज हैं या शब्द हैं, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। तो ये मंत्र है, ये कृष्ण गायत्री, और ये गायत्री से ही हमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का दिव्य लोक गोलोक वृंदावन हमें प्राप्त हो सकता है। तो कहोगे कि आप तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र की बात करते थे और अभी कह रहे हो कि कृष्ण गायत्री से प्रविष्ट होंगे गोलोक वृंदावन में, ये ब्रह्मा की बात है। लेकिन ब्रह्मा क्या कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। नारद मुनि ब्रह्मा को पूछते हैं एक कली की शुरुआत में, कलियुग की शुरुआत में पूछते हैं किम कली तरिष्यति, ये कलयुग में कैसे तैर जाऊं। तो स उवाच हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, इति षोडशकस नाम कली कल्मस नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नामों का रटन ही कलयुग में श्री कृष्ण धाम प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण प्राप्ति करवा सकता है। सर्व वेदेषु दृश्य, सब वेदों में से देखने के बाद ये कलयुग में ये मंत्र है। किम नाम इति, वो 16 नाम कौन से हैं? कलिय संतरण उपनिषद की ये बात है, अथर्ववेद की ये वार्तालाप है, संवाद है ब्रह्मा का और नारद मुनि। किम नाम इति, कौन से वो 16 नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये 16 नामों का रटन ही कलयुग में एकमात्र इलाज है। कैसे? सारे वेदों में मैंने देखा ब्रह्मा, चतुर्वेदी ब्रह्मा ने सब वेदों में से ए समय के लिए ये 16 अक्षर वाला मंत्र, 16 नाम वाला मंत्र, और इसे क्या प्राप्त होगा? चतुर्दा मुक्ति, चतुर्दा पुरुषार्थ, और उनके ऊपर प्रेम पुमार्थो महान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। तो ये कलयुग है, और ये जो गायत्री मंत्र है ये ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। फिर भी ये कृष्ण गायत्री इस्कॉन में जब ब्रह्म दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा होती है तो ये सब गायत्री आपको दी जाती है। पहली गायत्री जो आप जानते हो, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, कृष्ण गायत्री और काम गायत्री। ये काम गायत्री भी आगे के मंत्रों में हमने ली है, लेकिन मैंने गायत्री मंत्र, काम गायत्री मंत्र बताया नहीं था, ये सोच समझ के कि ये गुप्त मंत्र है ये काम गायत्री। तो ये कृष्ण गायत्री है, ये ब्रह्मा को सरस्वती जी देती है, और जब ब्रह्मा ये गायत्री मंत्र करते हैं तब उनको सब ज्ञान होता है और उनको सृष्टि रचना करने की शक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो 25वां श्लोक है, तपस्तम तप एतेन तव सिद्धिर भवत भविष्यति। सरस्वती कहती हैं कि ये गायत्री मंत्र से आप तप करो, अतः हे ब्रह्मा तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। उनके मनोरथ क्या थे? सृष्टि की रचना, वो उनका पूर्व जन्मों का बीज, उनका कर्मों का बीज, वासना इच्छा का बीज, क्या बीज था? मनोरथ क्या था? सृष्टि की रचना करना। तो ये 26वां श्लोक है, तो अथ तेपे सूचिरम प्रीणन गोविंदम अव्ययम श्वेत दीप पतिम कृष्णम गोलोक कथम परात परम प्रकृत्या गुण रूपिण्या पर्युपासितम सहस्त्र दल संपन्ने कोटि किंजलक ब्रूहिते भूमि चिंता मणिस्तत्र कर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्द ब्रह्म मयम वेणु वादयंतम मुखाम्बुजे विलासिनी गण वृत्तम स्वैर अभिष्टुतम पूजित। तो ये श्लोक में कहा गया है कि गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा जी वो लंबे समय तक श्वेत दीप में जो गोकुल में स्थित श्री कृष्ण हेतु तपस्या करते हैं और उसकी स्तुति इस प्रकार थी। क्या स्तुति थी? कि गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न कोटि कोटि केसर द्वारा संवर्धित एक कमल है जो हमने चर्चा की पहले और दूसरे दिन, और उस कमल की कर्णिका में बीच में विशाल आसन विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री कृष्ण विद्यमान है और वो कृष्ण अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्म वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रियसी गोपियां उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। गोपियों से ग्वालों से माया जगत के जीवों से पूजित हो रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। वो कृष्ण कहा है रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं और वो रत्न जड़ित सिंहासन कहा है गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन का वर्णन क्या है? जो कमल है उनके बीच वाला पीला भाग जो है कर्णिका, वो कर्णिका में रत्न जड़ित सिंहासन पे श्री कृष्ण अपनी वेणु नाद कर रहे हैं। उन श्री कृष्ण का सब गोपियां ग्वाल और प्रावरुषित गीत कीर्ति उनके परिकर उनकी कीर्ति का गीत गा रहे हैं। वो श्री कृष्ण का वो ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। 29 अथ वेणु निनादस्य त्रयी मूर्ति मयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुख्याब्जानि स्वयंभुवः गायत्रीं गायतः तस्मात् दियत्य सरोजज्यः संस्कृतश्चादि गुरुणा द्विजतां गमततः। तो तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के कानों में आठों कानों में प्रविष्ट हुई। तो कही क्या हुआ? श्री कृष्ण की दिव्य वेणु से गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी के कान में प्रविष्ट हुआ। गोपाल गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री नहीं। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पदम योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। श्री कृष्ण गोपाल गायत्री मंत्र कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ, ये गायत्री मंत्र गोपाल गायत्री कृष्ण गायत्री मंत्र ये कृष्णा उनको ये वेणुनाथ से उनके कानों में गायत्री मंत्र देते हैं। तो ब्रह्मा ये गायत्री मंत्र का गान करते हैं। 28 त्रया प्रबुद्धोथ विधिर विज्ञान तत्व सागर तुष्टाव वेद सारेण स्त्रोत्रेण केशवम। त्रिवेद मई गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो गायत्री से प्रबुद्ध हुए, श्री ब्रह्मा को ज्ञान हुआ और ज्ञान के बाद क्या किया ब्रह्मा ने? श्री कृष्ण गोविंद की स्तुति शुरू की। ये स्तुति ध्यान दो फिर से, मैं 3 बार बोलूंगा ताकि आपका लिंग जारी रहे। ये श्लोक के बाद ब्रह्मा की स्तुति शुरू होगी। ब्रह्मा श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुख पवृक्ष लक्षावृते सुसुरभि रभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सतस ब्रह्म सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहम् भजामि। ये सारे श्लोक कल से शुरू होंगे। तो आज का आखिरी श्लोक में क्या कि इस गायत्री मंत्र के जप से ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान हुआ। दिव्य ज्ञान का अर्थात भगवान का दिव्य धाम, भगवान की दिव्यता, भगवान की भगवत्ता, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, सब ज्ञान उनको हुआ ये गायत्री मंत्र से। और ये ज्ञान के बाद परिपक्व उनका ज्ञान हुआ, तब ये भगवान श्री कृष्ण की गोविंद की ये स्तुति करने लगते हैं। वो कल से हम ये स्तुति शुरू करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, ब्रह्म संहिता की।